आस्था की घबराहट। अब ये सुनकर तो संजना का चेहरा पूरी तरह उलझन पर पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। अब आगे संजना परेशान होकर सोचने लगी, ये लोग तो ऐसे मिल रहे हो मानो जैसे अपनी फैमिली वालों से मिल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा प्लान ऐसे कैसे फेल हो सकता है। वहीं एंजल ने अब आस्था को सवालिया नज़रों से देखा और शिकायत करते हुए बोली, आस्था आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है और ये अरमान जी को क्या हुआ है, ये हमारे साथ ऐसे अजनबियों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। एंजल की आवाज़ में चिंता सुनकर आस्था खुद को रोक नहीं पाई और सीधा जाकर वो अविनाश के गले से लग गई और रो पड़ी। अब आस्था को इस तरह से रोता हुआ देखकर अविनाश पूरी तरह से हैरत में पड़ गया। उसका दिमाग काफ़ी परेशान और उलझा हुआ था। उसने बड़े ही प्यार से आस्था के सर सहलाते हुए पूछा, क्या बात है गोरी, शांत हो जाओ, तुम क्यों रो रही हो। अब जैसे ही संजना ने अविनाश के मुंह से गोरी शब्द सुना, उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो एकदम से सोचने लगी कि ये अविनाश रघुवंशी आस्था को गोरी क्यों कह रहा है, क्योंकि संजना अच्छी तरह जानती थी कि बचपन से लेकर आज तक नानी माँ ही आस्था को गोरी कहकर पुकारा करती थी। लेकिन अविनाश भी आस्था को गोरी कह रहा था तो ये बात उसे हैरानी में डुबो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर कोई बिजली गिर गई। वहीं अरमान की भी आंखें पूरी तरह से फटने को तैयार थीं और वो परेशान होकर मन ही मन सोच रहा था, ये मिस्टर अविनाश रघुवंशी इतने बड़े करोड़पति बिलियनर आदमी होकर आस्था से इस तरह क्यों मिल रहा है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। आस्था को रोते हुए देखकर एंजल भी तुरंत अविनाश और आस्था के पास आई और सीरियस होकर बोली, क्या बात है आस्था, यहाँ क्या हो रहा है और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं और तुम्हारे पति को क्या हुआ है, वो हमसे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। संजना जो पहले ही आस्था से काफ़ी नाराज़ थी, वो एंजल से ये सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। ये आप लोग क्या कर रहे हैं, हाँ अरे मैंने आप लोगों को इतनी बड़ी न्यूज़ दी कि ये लड़की रघुवंशी मैंशन का गलत इस्तेमाल कर रही है और ख़ुद को यहाँ का मालिक बता रही है और आप लोग इसे ही गले से लगा रहे हैं, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। संजना की अकड़ और घमंड भरी बातें सुनकर अविनाश को झुंझलाहट हुई। वो फाड़ खाने वाली नज़रों से संजना को घूरते हुए बोला, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में इस तरह की घटिया बातें करने की, और ये इस रघुवंशी मैंशन की मालकिन है और अब ये रघुवंशी मैंशन इसी का है क्योंकि ये आस्था रघुवंशी है मेरी बहन, समझी तुम। अविनाश के शब्द ऐसे थे मानो जैसे संजना के ऊपर किसी ने बम गिरा दिया हो। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। संजना की हालत ऐसी हो गई थी मानो उसके पैरों तले जमीन खिसकी जा रही थी, दुनिया उसे गोल घूमती दिखाई दे रही थी। संजना ये सदमा झेल ही नहीं पाई, तुरंत ही उसे चक्कर आने लगे। अरमान के चेहरे पर भी उलझन भरे एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में एक साथ कई सारे ख्याल आ रहे थे। उसके दिल की धड़कन बेकाबू होकर धक धक किए जा रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अभी तक जिस लड़की को वो गोल्ड डिगर समझ रहा था वो असल में अविनाश रघुवंशी की बहन हो सकती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। अरमान की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अरमान ने अपना माथा रगड़ा, उसे सिरदर्द फील होने लगा। संजना के बेहोश होने पर आकाश और सुमित ने आगे बढ़कर बॉडीगार्ड्स को इशारा किया, इसे नौकरों के हाथों इसके घर भिजवा दो। तभी अचानक ध्रुव की नज़र अरमान पर पड़ी जो अपने माथे को सहला रहा था। वो तुरंत उसके पास आया और उससे बोला, अरमान भैया आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, प्लीज शांत हो जाइए, आप ज्यादा सोचकर खुद को नुकसान मत पहुंचाइए। मगर अरमान का सिर फटने को तैयार था, इसलिए ध्रुव की बात मानते हुए उसने आस्था को एक नज़र देखा और वहां से वापस सिंघानिया मैंशन आराम करने चला गया। वहीं अविनाश ने आगे बढ़कर आस्था का हाथ थाम लिया और उससे पूछा, क्या हुआ गोरी, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। तब आस्था ने कम शब्दों में सारी बातें अविनाश और एंजल को समझा दी थी। फिर वो आंसू भरी आंखों से अविनाश को देखकर बोली, भैया मैं बस आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपको जरा सी भी परेशानी हो। वहीं ये सारी बातें सुनकर अविनाश का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था। उसको तगड़ा झटका लगा था और उसका दिल अनजानी आशंका से बुरी तरह से थक थक कर रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि राजवीर जिंदल उनकी जिंदगी में दस्तक देने वापस आ जाएगा। अविनाश ने आस्था का परेशान चेहरा देखा और किसी तरह खुद को संभालते हुए जल्दी से उसे दिलासा देने की कोशिश की, गोरी तुम फिक्र मत करो, मैं दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर का इंतजाम करूंगा, बहुत जल्द ही तुम्हारे पति को ठीक करवा दूंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अविनाश के शब्द सुनकर आस्था उदास मन से बोली, आपको क्या लगता है भैया, क्या हमने कोशिश नहीं की होगी, हमने एक से बढ़कर एक डॉक्टर और सभी लोगों से पता करने की कोशिश की है। ध्रुव जी को तो आप जानते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने हर डॉक्टर से अरमान जी के बारे में बातें की हैं, लेकिन अब अरमान जी को कोई ठीक कर सकता है तो वो है राजवीर जिंदल। भले ही राजवीर जिंदल अब एक बार फिर हमारी जिंदगी में जहर खोलने वापस आया हो, मगर इस बार हम उसे उसकी किसी भी चाल में कामयाब होने नहीं देंगे। भले ही आस्था का रवैया ठंडा था, लेकिन माहौल में अचानक गर्मी सी फैल गई थी। हालांकि ये गर्मी झुंझलाने वाली नहीं थी बल्कि सुकून देने वाली थी। अब जैसे ही आस्था ने रूखे अंदाज में ये शब्द कहे, अगले ही पल सभी का चेहरा कॉन्फिडेंस से भर उठा। वहीं अभिमान जी कुछ सोचकर सीधे अपने कमरे में चले गए। घर में इतना सारा ड्रामा हो रहा था कि उन्हें रह रहकर बुरा लगने लगा था। सबसे ज्यादा गुस्सा उन्हें वसुंधरा पर आ रहा था। अगर वसुंधरा ने अरमान को इतना टॉर्चर नहीं किया होता तो अरमान की जिंदगी में राजवीर जिंदल की एंट्री कभी नहीं होती। वसुंधरा जब से घर में रहने आई थी तो वो नौकरों की तरह काम करती थी। तब अभिमान जी अपने दिल की सारी भड़ास वसुंधरा पर निकालते रहते थे। वसुंधरा को अपने सामने काम करते हुए देखना उन्हें अजीब सा सुकून देता था, लेकिन वसुंधरा के जाने के बाद उनके दिल में एक अजीब सा खालीपन आ गया था, जिसे वो चाहकर भी किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे। हालांकि वो सबकी खुशी में खुश होने की पूरी कोशिश कर रहे थे और वो जानते थे कि वसुंधरा जैसी औरत उनकी जिंदगी में और उनके परिवार में रहने के लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें एक अजीब सी कमी खल रही थी। शायद वसुंधरा के पास रहने पर उनकी दबी हुई मोहब्बत फिर से जाग उठी थी। भले चाहे वसुंधरा ने उनके साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो, लेकिन उससे कई गुना सजा वो खुद झेल चुकी थी और शायद वसुंधरा को अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। लेकिन जिस तरह से उसने जायदाद अपने नाम करने की कोशिश की तो वो एक बार फिर से सबकी नजरों में गिर चुकी थी, लेकिन इस बार वसुंधरा कितनी जोर से गिरी थी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। वहीं आस्था अभिमान जी का जाना नोटिस कर चुकी थी, लेकिन उस वक्त वो खामोश रही। फिलहाल आहान ने बड़े ही मैच्योर तरीके से सभी लोगों को हैंडल करना शुरू कर दिया था और अच्छी तरह से सारा काम करने के बाद वो सीधा आकाश के पास आया और एकदम सपाट भाव से बोला, आकाश भैया, आस्था भाभी, सुमित भैया, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है, आप लोग प्लीज स्टडी रूम में आ जाइए। आहान की आवाज में सीरियसनेस साफ छलक रही थी, जिसे सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ और उन सबके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। तभी आहान ने एकदम से रुककर अविनाश को शांत नजरों से देखते हुए कहा, अविनाश भैया आप भी आ जाइए। इतना बोलकर वो सीधा स्टडी रूम में चला गया। सब सोच रहे थे कि आहान इतनी गंभीरता से क्यों बातें कर रहा था, जबकि वो तो हमेशा बेफिक्र अंदाज में बात करता है।
आज संजना ने जो सीन क्रिएट किया था उसके हिसाब से तो अब तक आहान बातों ही बातों में संजना का मजाक उड़ा चुका होता। ध्रुव अरमान का ट्रीटमेंट करने के बाद सीधा स्टडी रूम में चला आया था। तब तक वंशिका, रश्मि और राधिका एंजल के साथ काफी सारी बातें करने लगी थीं और नानीमा भी अपना मन बहलाने के लिए रौनक और मारिया के पास चली गई थी और उनके बच्चों के साथ खेलने लगी थी। फिलहाल आहान के बुलावे पर सभी लोग स्टडी रूम में इकट्ठे हो गए। वहीं आस्था आहान को देखकर गंभीर स्वर में बोली, भैया आप क्या बताना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? इस पर आहान ने सीरियस एक्सप्रेशन से सबकी ओर बारी बारी से देखा और एकदम से कहा, मैंने राजवीर जिंदल के ठिकाने का पता लगा लिया है। आहान के शब्द ऐसे थे मानो जैसे उनके ऊपर किसी ने बम गिरा दिया हो। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वही आस्था थोड़ी हैरान और एक्साइटेड होते हुए बोली, क्या रेली भैया, क्या आपने सच में पता लगा लिया? राजवीर जिंदल कहाँ रहता है? आप मुझे वहाँ का पता बताइए, मैं आज ही वहाँ जाकर वो एंटीडोट लेकर जाऊँगी और अपने पति को ठीक कर दूंगी। आस्था के मुँह से ये शब्द सुनकर आहान का चेहरा जम गया। अगले ही पल उसकी आंखों में निराशा और उदासी उभर आई और उसने गुस्से और अफसोस के साथ कहा, भाभी आप पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। भले ही मैंने उसके ठिकाने का पता लगा लिया हो, लेकिन उसके ठिकाने में एंट्री लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैंने अच्छी तरह से सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई है। वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उसे इस तरह से बनाया गया है जैसे कि कितने ही सारे भूत प्रेत उसी विला में मौजूद हों। राजवीर ने उसे एकदम डार्क बनाया है, इसलिए उसका नाम भी डाक विला रखा गया है। और आप जानती हैं भाभी, वहाँ पर एक एक गार्ड 10-10 गार्ड्स के बराबर है। इंटरनेशनल लेवल के गार्ड वहाँ सिक्योरिटी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक बार को हम उन इंटरनेशनल लेवल के गार्ड का मुकाबला कर लें, लेकिन वहाँ के जो शिकारी कुत्ते हैं उनका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर बिना तैयारी के जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अब आहान ने जैसे ही वहाँ पूरा स्ट्रक्चर और डाक विला के डिटेल्स बारे में सबको समझाया तो सबके चेहरे हैरानी से भर गए थे। सबका दिमाग बुरी तरह से उलझा हुआ था, वो कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे। वहीं ध्रुव तो पूरी तरह कंफ्यूज था कि आहान ने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया और अभी तक खुद को कोई क्रेडिट भी नहीं दिया। हालांकि अगर ये पहले वाला आहान होता तो वो अब तक कितनी ही बार कह चुका होता, आहान द ग्रेट सिंघानिया ने ये काम किया है। लेकिन ये सारी बातें कहते हुए आहान एक बार भी ना मुस्कुराया ना खुद की कोई तारीफ की। वो पूरी तरह सीरियस होकर सारी बातें बारीकी से बता रहा था। तभी आस्था ने एकदम से उससे पूछा, लेकिन भैया आपको ये सारी बातों के बारे में पता कैसे चला? तब आहान ने गहरी सांस ली और कहा, राजवीर के बारे में जो भी डिटेल्स मैंने पता की हैं उसे कंफर्म करने के लिए मैंने टाइगर भैया और अबीर भैया को वहाँ भेज दिया है। वो सारी बातों का पता लगाकर अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। और मैंने ये बात भी पता कर ली है कि इस वक्त वहाँ जाना किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। और हाँ, मुझे एक और इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस वक्त राजवीर जिंदल के साथ कोई और भी उसके डाक विला में रह रहा है और वो कोई नहीं बल्कि ब्लैक डेविल है। वही ब्लैक डेविल जिसने मेरे चाचा विवेक सिंघानिया के जरिए हमारे अंश को अगवा करवाने की कोशिश की थी। आहान के मुंह से निकले इन शब्दों ने वहां खड़े हर एक शख्स को हैरानी में डाल दिया था। अचानक आस्था का दिल एक अजीब से डर, घबराहट और बेचैनी से भर गया था। उसे अचानक ही अंश का ख्याल आने लगा था। वो पूरी तरह घबरा गई, क्योंकि आस्था अभी तक वो एक्सपीरियंस नहीं भूली थी। अंश के किडनैपिंग वाली रात वो ऐसे कैसे भूल सकती थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों साफ झलक रहे थे। वहीं ध्रुव ने जल्दी से आस्था की सिचुएशन भांप ली और फटाफट उसके करीब गया और उसका हौसला बढ़ाते हुए बोला, भाभी प्लीज पहले आप थोड़ा शांत हो जाइए। आप इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकती भाभी, प्लीज आप इस सिचुएशन में कमजोर नहीं पड़ सकती। ये बोलकर ध्रुव आस्था को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बीच आहान के एक्सप्रेशन पूरी तरह से एक जैसे थे। उसके एक्सप्रेशन में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया था और वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, भाभी हमारे रहते आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप फिक्र न करें। आहान ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की बात जारी रखी। मैं ये बात अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि वो ब्लैक डेविल अरमान भाई से बेहद नफरत करता है। फिलहाल मुझे ये पता चला है उसका एक असिस्टेंट है रॉकी, वो नाइट बार में आता जाता रहता है। उसे लगातार फॉलो करने पर ही मैं राजवीर के डाक विला तक पहुँचा हूँ। रॉकी के अलावा किसी और अनजान आदमी के उसके डाक विला में एंट्री नहीं है। मामले की गंभीरता को समझते हुए आस्था पूरी तरह से हैरत में पड़ गई थी। वहीं ध्रुव हैरानी से आहान की ओर एकटक देख रहा था, क्योंकि राजवीर के बारे में ये सब कहते हुए आहान और भी ज्यादा सीरियस हो गया था और अगले ही पल उसकी वो सीरियसनेस गुस्से में बदल गई थी।